الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة بقرة کی تفسیر چل رہی ہے درس قرآن کے اندر اور آج جو آیت تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی 104 نمبر آیت 104 اور جو بات چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہودیوں سے بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور ان کے ذریعے سے انڈائریکٹلی مسلمانوں کو کچھ میسیجز دے رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹلی تو ان سے ہی خطاب ہے مدینہ کے جو یہودی ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی کچھ میسیجز دیے جا رہے ہیں اور وہی ہم اس سے اخذ کر رہے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو گے اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا مدینہ منورہ کے اور کہا کہ تم لوگ رائنا، یعنی ایک ورڈ ہے عربی کا رائنا، یہ نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو انظرنا اور سنا کرو، اور پھر کہا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بیک گراؤنڈ اس آیت کی یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ مختلف سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف. ان میں سے ایک سازش یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہنا شروع ہو گئے تھے. اب رائنا جو عربک کے اندر ہے ورڈ، اس کا مطلب ہے ہماری رعایت کریں. تو ایک طرح سے ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی تھی بظاہر، یعنی کہ ایک رسپیکٹ دی جاتی تھی کہ رائنا کہ ہماری رعایت کریں. لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا تھا. وہ ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ ان کی جو عبرانی زبان ہے جس میں تورات ان کی اتری ہے، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لعنت کے ورڈ کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا، یا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے راعینا، اگر تھوڑا اس کو پرولونگ کرے لمبا کرے راعینا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا چرواہا، ہمارا چرواہا. تو وہ اس طرح کا ورڈ لے کے آئے کہ جو بظاہر لگے کہ عربک کے اندر ہماری رعایت کریں، لیکن ایکچولی ان کے ذہن میں اس کا کچھ اور میننگ ہوتا تھا. اور مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ ورڈ کہنا شروع ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس پہ وہ یہودی بہت خوش ہوتے تھے کہ دیکھو یہ ہماری چال کے اندر آ گئے، ہماری بات کے اندر آ گئے، انہوں نے بھی یہ ورڈ یوز کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی حکم قرآن میں دے دیا کہ اب یہ نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے تو انظرنا، یہ کہہ دیا کرو کہ ہماری طرف نظر کریں اور سنا کرو. تو یہ تو یہودیوں نے یہ ورڈ جب کہنا شروع کیا رائنا، تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ میسج دیا
کہ
तो वो कह रहे थे कि राइना राइना कहा जाए, राइना को ना कहें बल्कि उनजुन्ना कहा जाए। तो जब उनजुन्ना का ये हुक्म आ गया और राइना को कहना मंसूख कर दिया गया, तो इससे क़यामत तक के इंसानों को एक मैसेज दे दिया गया, और वो ये है कि कोई ऐसा वर्ड कोई भी कभी यूज ना करे कि जिसके ड्यूअल मीनिंग्स हो, कि एक बज़ाहिर कुछ और मीनिंग्स हो और दूसरा कुछ और मीनिंग्स हो। यानी बज़ाहिर तो एक मीनिंग जाहिर हो और स्काइप पे आ जाएगा। तो ऐसा कोई वर्ड कभी यूज ना करे कि जिसके ड्यूअल मीनिंग्स हो, कि जाहिर में एक मीनिंग हो और बातिन में दूसरा मीनिंग हो। यानी इंसान सोचे जहन में कोई और मीनिंग और जाहिर में कुछ और वर्ड यूज कर रहा हो, ऐसा ना किया करे। अगर ऐसा करेगा तो ये इस अदब के खिलाफ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया। अब यहां से ये बात ही पता चल गई कि जो हम आदाब के सेशंस करते हैं जितने भी, उसमें जो सेशन है आदाब के, वो आदाब कैसे ड्राइव होते हैं, वो आदाब इसी तरह से ड्राइव होते हैं। यानी कुरान और हदीस के अहकाम के अंदर से कुछ आदाब अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं और उन्हीं उनके जरिए से उलमा उन आदाब को निकालते हैं और उनको इजी वर्ड्स में आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा वर्ड यूज करने की ममानियत हो गई कि जिसके दो मीनिंग्स हो, एक अच्छा और एक बुरा हो, और बज़ाहिर देखने वाले को अच्छा फील हो लेकिन उसको कोई मिस यूज भी कर सकता। तो इसमें वो सारी कम्युनिकेशन शामिल हो गई, वो सारे अल्फाज शामिल हो गए, वो सारे वर्ड शामिल हो गए, वो सारे सेंटेंसेस शामिल हो गए कि जो कि इंसान यूज करता है, जो कि इंसान यूज करता है दूसरे को कहने के लिए, लेकिन उसके अंदर कोई अच्छे मायने नहीं पाए जाते। यानी कि कई बार ऐसे वर्ड होते हैं कि जिसमें कुछ बुरे मीनिंग्स भी होते हैं, या ऐसा जुमला होता है जिसके बुरे मीनिंग भी कोई ले सकता है और कोई अच्छे मीनिंग भी ले सकता है, तो वो भी नहीं बोलने चाहिए एहतियातन, ताकि कोई बुरा मीनिंग ना उसका ले ले। तो ये बहुत अहम अदब है जो कि बोलने के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां बता दिया। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, कि जो काफिर हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। तो यहां से उलमा ने यह नुक्ता निकाला कि चूंकि वो मजाक उड़ाते थे मुसलमानों का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए दर्दनाक अजाब की पेशेनगोई कर दी। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये कतन बर्दाश्त नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मजाक उड़ाए। और इसलिए इस पे उलमा का इजमा है कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बूझ कर अहानत करे तो उसकी सजा मौत है, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को अपनी अहानत करने पे, अपना मजाक उड़ाने पे उसको सजाए मौत दी, कत्ल करवाया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फैसला कर दिया कि उनके लिए क्यामत के दिन भी एक दर्दनाक अजाब। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मा यवद्दुल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। कि काफिर लोग ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिकीन में से, ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई भलाई तुम पर नाजिल हो, हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस फरमा लेता है और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है। अब यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं यहूदियों के एक एटीट्यूड का फिर जिक्र किया, और वो ये है कि ये अहले किताब यानी कि यहूदी हों या मुशरिक हों, उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी और पे खैर उतारे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों चूज किया गया खैर के लिए या कुरान के लिए या अहकामात के लिए, या जो अहकाम कुरान में दिए, तो कई बार यहूदियों को फील होता था ये अहकाम हम यहूदियों को जो तौरात में हुक्म दिए गए उससे बेहतर हैं, तो इसलिए वो परेशान रहते थे और ये कहते थे और इसमें जेलसी शो करते थे, हसद शो करते थे कि क्यों ऐसे हुक्म हमें दिए, इनको मिल रहे हैं मुसलमानों को कि जो हमसे बेहतर हैं। यानी आखिरी नबी की फजीलत वो जानते थे, उनकी किताबों में मेंशन थी उस नबी की फजीलत, और वो नबी हमारी नस्ल से पैदा नहीं हुआ, किसी और नस्ल से पैदा हो गया, ये उनको जेलसी। फिर ये जेलसी कि इतने अच्छे अहकाम जो कि लीनियंट हैं हमारे से, यानी कि यहूदियों को बहुत सख्त हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए थे, जिनमें से कुछ ऐसे थे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई शख्स नापाक हो जाता है, किसी का कपड़ा नापाक हो जाता है तो धोने की ऑप्शन नहीं है, बल्कि उसको काटना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। इसी तरह कोई बर्तन प्लेट वगैरह उसमें कोई नापाक चीज़ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सुअर आ जाए, अब उसको धोने की कोई ऑप्शन नहीं है, उसको फेंकना पड़ता है, या कोई और मर्दार चीज़ उसमें डाल दी जाए तो अब उसको धोने की ऑप्शन नहीं बल्कि बर्तन ही फेंकना पड़ता है। तो इस तरह के अहकाम को वो देखते हुए सोचते थे कि इनको क्यों ऐसे हुक्म दिए जा रहे हैं जो हमारे शरीयत से लीनियंट है, एक ये चीज़, और सबसे बेहतरीन नबी इनको क्यों मिले, हमें क्यों नहीं मिले। तो इस तरह की जेलसी उनके अंदर थी, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये जो इस तरह के अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल इस उम्मत पे फरमा रहे हैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो वो उनको कबूल नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमा दिया कि वल्लाहु यक्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ, कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है पसंद कर लेता है, और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फैसला करता है कि किसको फजल से नवाजना, ये अल्लाह की चॉइस होती है। तो इंसान का काम है ओबे करना, जैसे पिछली आयत में भी जहां पे कहा कुल उनजुरना, कि उनजुरना कहा करो, एक साथ ये भी कहा वस्मा कि सुना करो। इंपॉर्टेंट है सुनना और अतात करना, कि समय ना वताना, कि हमने सुना हमने माना, सुन के सोचना, सुन के उस पर उसकी लॉजिक्स से तलाश करना, उसके उसकी बारे में फिक्रमंद हो जाना कि ये क्यों हुक्म दिया गया, इसमें क्या वजह है, इसमें क्या हमारी बेहतरी है या बुराई है, ये मुसलमान का सेवा नहीं या ईमान वालों का सेवा नहीं या अल्लाह के मानने वालों का सेवा नहीं। इसलिए वस्मा हूँ कहा कि सुनो और मानो। इसी चीज को यानी जिसको अतात कहते हैं, समेना वाताना, कि सुनना और मानना, उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने एक और अंदाज भी अपनाया, और वो ये जो अगली आयत में है कि मान नन सब मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बि खैरि मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर अलम तालम अन्नल्लाहा लहु मुल्कु समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर। हम जब भी कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसी जैसी आयत ले आते हैं, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अब यहां से एक बात शुरू की जा रही है जो कि बैकग्राउंड है अगली चंद आयात जो अगले रुकू में आने वाली है, उनका बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। और वो बैकग्राउंड क्या है कि जब तहवील किबला हुआ, यानी कि किबले को बैतुल मुकद्दस से बैतुल हराम की तरफ चेंज कर दिया गया, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुई यहूदियों के अंदर भी और मुशरिकीन के अंदर भी कि ये क्या बात है कि पहले तो बैतुल मुकद्दस किबला यानी जो फ़लस्तीन में है वही यहूदियों का किबला था, वही मुसलमानों का किबला था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हुक्म दिया कि नहीं, अब बैतुल मुकद्दस नहीं बल्कि बैतुल हराम जो कि मक्का मुकरमा में, ये तुम्हारा किबला बन जाएगा। तो ये जो किबले को चेंज करने का हुक्म आया तो ये लोगों के लिए एक इशू बन गया, और उसको उन्होंने हाईलाइट किया कि देखो ये क्या बात है कि अगर अल्लाह की तरफ से अहकाम आते होते तो फिर ये हुक्म चेंज ना होते। ये तो इंसान की कमजोरी है कि वो हुक्म बदल देता है, बातें बदल देता है, आज एक चीज कहता है कल दूसरी चीज कहता है, जो रब्बुल कायनात है वो नहीं बातें अपनी बदलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है बल्कि अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, इसलिए चेंज कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको क्लियर किया इस आयत के अंदर कि जब कोई आयत मंसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसी जैसी आयत ले आते हैं। कि देखो जब हम कोई चीज मंसूख कर देते हैं, मंसूख कहते हैं यानी इसके मफहूम ये है कि जब एक हुक्म बदल दिया जाता है दूसरे हुक्म के साथ, यानी एक और ऑर्डर आ जाता है और पिछला ऑर्डर को बे करना खत्म कर दिया जाता है, अब नए ऑर्डर को बे किया जाता है, जैसे कहते हैं पहला हुक्म मंसूख हो गया, नस्ख हो गया वो, या उसे भुला देते हैं। यानी कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता था कि कई चीजें भूल जाती थी अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह ताला का ये सिर्फ इसलिए होता है कि इससे बेहतर ये उसी जैसी आयत ले आते कि या तो उससे बेहतर कोई हुक्म आने वाला होता है या वैसे कोई हुक्म आने वाला होता है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पे कादिर, उसको कुदरत है कि वो जो मर्जी करे, आज एक हुक्म दे कल दूसरा हुक्म दे, ये तो बादशाहों की आदत है। इंसान जो हुक्म बदलता है, बातें बदलता है, वो अपनी कमजोरी की वजह से बदलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बदलते हैं अपनी हाकमियत की वजह से कि वो जब चाहे जो मर्जी जिस चीज को बदल दे। इंसान का काम है मानना। तो वो जो कहा कि समय ना वताना, सुनो और मानो, और हुक्म नाजिल भी एक ऐसा नहीं किया कि नमाज के अलावा वक्त पे कर देते, ऐन नमाज के अंदर हुक्म नाजिल किया कि हम अपना किबला बदलो। तो जो मस्जिद किबला तैन थी वहां हुक्म आया और वहां पे हुक्म को यानी कि किबले को नमाज के अंदर बदला गया, रुख बदला गया। तो इस तरह से अल्लाह ताला आजमाते हैं कि इंसान सुनता और मानता है या सुनता है सोचने में पड़ जाता है, उसकी उसकी लॉजिक्स को ढूंढने में लग जाता है, उसका क्या रद्द अमल होता है। तो आयत के मंसूख होने के हवाले से ये बात थोड़ी क्लियर कर लेनी चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो कुरान पाक की कई आयतें मंसूख हुई। अब मंसूख होने से क्या मुराद, कि ऐसा भी हुआ कि पहले एक आयत उतरी और फिर उसके बाद किसी और आयत से उस हुक्म को मंसूख कर दिया गया, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि कुरान पाक की आयत और हदीस पाक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कुछ कि अपनी बात कही, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई हदीस पाक आई और उससे वो हुक्म मंसूख हुआ या चेंज हुआ। और तीसरा तरीका ये था कि कोई आयत को पढ़ा ही नहीं अब जाता, यानी कि एक कुछ तो ये है कि कुछ आयतें अभी भी हैं जो पढ़ी जाती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता क्योंकि हुक्म मंसूख हो गए। कुछ है कि आयतें तो अभी आयतें पढ़ी ही नहीं जाती, यानी कुरान पाक में अब है ही नहीं। तो ये कई तरीकों से हुक्म मंसूख हुए। इसकी एग्जाम्पल देख लें कि कुरान पाक में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बकरा में ही फरमाया 180 नंबर आयत में, ये कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन अल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तकीन, कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो अपने वालदैन और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए, ये एक जिम्मेदारी है अल्लाह से डरने वालों की। तो ये पहले हुक्म आया कि जब मौत का वक्त आए तो जरूरी है कि वालदैन के लिए जो कराबतदार हैं उनका एक उनके लिए एक हिस्सा मुतय्यन कर दे अपनी तरफ से। तो लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दूसरी आयत उतार दी कि यूसीकुम अल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़ुल अंसयैन, तो निसा के अंदर कि अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि विरासत में एक लड़के को दो लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। और फिर आगे पूरी तफसील है वसीयत की कि किस तरह से मीरास तकसीम होगी, विरासत तकसीम होगी। तो अब ये आयत पढ़ी जाती है सूरह बकरा की 180 नंबर आयत, लेकिन अब इसमें अमल नहीं किया जाता। इसी तरह एक और सूरह बकरा की आयत जो रमजान के बारे में है कि वाल्लज़ीन युतीकूनहु फ़िदयतुन ताआमु मिस्कीन, और जिन लोगों के लिए रोजा रखना दुश्वार हो वो एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऑप्शन दी थी शुरू में कि जो शख्स रोजा ना रख सके तो वो ऑप्शनल है ना रखे, बल्कि उसके बजाय क्या करे कि किसी मुस्कीन को खाना खिला दिया करे, तो ये भी ठीक है, रोजा रख ले या खाना खिला दे, यानी सेहतमंद होने के बावजूद वो खाना खिलाने की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन फिर दूसरा हुक्म आ गया कि फमन शाहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, के फिर कोई तुम में से अगर मुकीम हो यानी कि सफर ना कर रहा हो, बीमार भी ना हो, तो उसे चाहिए, पर उस पर जरूरी है कि वो रोजा रखे। तो इससे वो ऑप्शन खत्म कर दी। तो इनिशियली वो ऑप्शन मौजूद थी, कुछ अर्सा रही और फिर उसके बाद उसको मनसूख कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारी कुरान पाक के अंदर एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जिसमें ये मिलता है कि पहले एक हुक्म था और फिर दूसरा हुक्म नाजिल कर दिया गया, पहला हुक्म को मनसूख कर दिया गया। अब इसकी वजह क्या होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों हुक्म मनसूख कर देते हैं? तो उसमें एक चीज तो यह है कि जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हो रहा था तो लोगों की एक तरबियत चल रही थी, यानी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की एक तरबियत चल रही थी, उनकी तरबियत की जा रही थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ग्रेजुअली उन पे हुक्म को हुक्म दे रहे थे। तो जब ग्रेजुअली हुक्म दे रहे थे तो वहां पर ये जरूरी था कि तदरीजन हुक्म आए, स्टेजेस के अंदर हुक्म आए, ऑल ऑफ अ सडन फाइनल हुक्म आ जाता तो वो लोगों के मिजाज के शायद पे भारी हो जाता। फॉर इसकी एक आम मिसाल ये है कि अरब के अंदर शराब पीने की आदत थी, यानी शराब आम पी जाती थी। जब शराब आम पी जाती थी, अब इसको मंसूख करना, यानी जो इजाजत है शराब पीने की, अब शरीयत ने उसको मना करना है। अब एक तरीका तो है कि ऑल ऑफ सडन कह दिया जाए अब शराब नहीं पी जाएगी, अब इतना यानी उसका नशा होता है, उसको छोड़ना एक मुश्किल काम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको ग्रेजुअली हराम किया कि पहले ये आया था सूरह बकरा के अंदर ही वो आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इसके अंदर फायदे भी हैं शराब के अंदर और नुकसान भी हैं, लेकिन इसके नुकसान वइस्मुहुमा अकबर मिन नफ्हुमा, कि इसके नुकसान इसके फायदे से ज्यादा है। तो एक मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि इसके नुकसान ज्यादा है। फिर एक जगह दूसरी जगह हुक्म आया दूसरी बार कि जब तुम नमाज की हालत में हो, जब नमाज पढ़ने लगो तो शराब ना पियो, जब शराब के नशे में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। तो अब नमाज पढ़ना ममनू हो गया शराब के नशे गया लेकिन अभी भी शराब पी जा रही थी इवन मुसलमानों के अंदर, सहाबा के अंदर। फिर अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने फाइनल हुक्म दिया कि ये शैतानी काम है, फस्तनिबू, इससे बचो, इससे बाज आ जाओ, इससे इज्तनाब करो, और फिर कुल्ली तौर पे उसको हराम कर दिया गया। तो अब वो आयतें अभी तक पढ़ी जा रही हैं, यानी सूरह बकरा की वो आयत कि इसमें फायदे भी हैं नुकसान में अभी तक है, इसी तरह वो आयत के नमाज के करीब भी ना जाओ नशे की हालत में, वो अभी भी है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। अब कोई शख्स कहे कि कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, तो मैं शराब इतनी पीऊंगा कि नशा, यानी कि नशा चढ़ेगा, मैं नमाज के करीब नहीं जाऊंगा, क्यों? अल्लाह ताला कह रहे। तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने कहा लेकिन अब वो आयत मनसूख हो चुकी। अब इस मसले से कई बातें इंसान को समझ में आती हैं। नंबर वन, एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि शरीयत के बात समझने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है, यानी कि एक जो नजरिया है या एक जो कॉन्सेप्ट है कि कुरान पाक का पढ़ो, तर्जमा उसका पढ़ लो और खुद अमल कर लो। अब अगर इसको ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए इस नजरिए को, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा कि ये शख्स जो कुरान पाक का सिर्फ तर्जमा पढ़ रहा है वो इन सारी आयात को पढ़ेगा और सारी आयात को पढ़ के अपना कोई नतीजा निकाल लेगा। वो कहेगा शराब में तो अल्लाह ताला कहते हैं फायदे भी हैं, अल्लाह ताला तो कहते हैं नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, मना तो नहीं किया। और इसी तरह जब शराब की हुरमत आई तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हराम हो गई, अल्लाह ताला ने कहा फजतनिबू, उससे बाग आ जाओ, इज्तनाब करो। हराम के वर्ड तो नहीं कहा, तो मैं तो इज्तनाब करता हूं, मैं तो नमाज की हालत में नहीं पीता, मैं तो यूजल हालत में नहीं पीता। तो ऐसे ऐसे नतीजे निकालेगा जो कि बिल्कुल शरीयत से मुतसादिम होंगे। इसलिए एक आम शख्स को जरूरी है कि वो किसी एक्सपर्ट से राबता करे कि जो कि उस कुरान और हदीस के एक्सपर्ट हो, ताकि वो सारी बात समझा सके, अदरवाइज वो मिसगाइड रहेगा, वो मिसगाइड खुद भी होगा और दूसरों को भी मिसगाइड करेगा। और ये बात कोई दूर की नहीं है, बल्कि ये दौर ऐसा ही है कि लोग इस तरह से शराब को हलाल करार देने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तो कहीं कहा ही नहीं हराम होने का, अल्लाह ताला ने कहा इज्तनाब करो, तो ठीक है, मैं इज्तनाब कर रहा हूँ कि वो तो फ्रिज में पड़ी है, लेकिन मैं तो मैं उससे दूर रहता हूँ आम हालत के अंदर, या मैं सिर्फ इतनी पीता हूँ कि नशा ना चढ़े, अल्लाह ताला का नशा ना चढ़े, इतनी पियो। इतना इस्तदलाल किए जा रहे हैं इस दौर के अंदर, और उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये कि इंसान कोशिश कर रहा है कि मैं खुद इससे अखज करूं, और जब खुद करता है और चूंकि उसको पूरा नॉलेज नहीं होता तो उससे गलती करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मेडिसिन की बुक से प्रिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश करे, यानी उसे कुछ ना पता हो कि क्या है, ये क्या है मेडिसिन, क्या होती है, और फार्माकोलॉजी क्या होती है, और दूसरी डिटेल्स क्या होती हैं, और देखे कि अच्छा मैंने इलाज करना है तो मैं ये किताबें मौजूद हैं, इनको खोलूं और इसमें से कोई दवाई खुद ही चूज करके खा लूं। और रिसेंटली एक केस मेरे सामने आया कि एक शख्स किसने ऐसे ही किया, यानी उसने किसी ने सीखा, उसने कहा कि मैं किताबें पढ़ के कर सकता हूं, ये रिसेंट बात, और उसने ना सिर्फ खुद खाई बल्कि दूसरे को, अपने दोस्त को कहा कि अच्छा तुम्हें ये बीमारी है, बैक एक है, अच्छा ये दवाई खा लो। तो उसने कहा तुमने कहते मैंने बस मतलब पढ़ लिया, उसको खाना चाहिए, और उसकी इतने सीवियर इफेक्ट्स हुए कि उसे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। यानी ऑब्वियसली उसने दवाई तो शायद देख के, लेकिन उसकी डोजेज उसने ओवर डोज कर दी या क्या किया कि उसके इतने इफेक्ट बुरे आए उस दोस्त के ऊपर कि उसको हॉस्पिटल एडमिट करके कितने दिन उसको ट्रीट किया गया। तो यही नतीजा निकलेगा अगर कोई शख्स बगैर सीखे कुरान पाक को का तर्जमा करके पढ़ के उससे मसाइल निकालने की कोशिश करेगा। अब यहां पे सिर्फ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर ये क्यों कहा कि मैंने कुरान को आसान कर दिया है कोई इसको समझे? तो वो देखिए इसके दो लेवल्स हैं। कुरान पाक से एक है नसीहत अखज करना, एक है नसीहत से क्या मुराद है कि मुझे जिंदगी गुजारने का मकसद पता चल जाए, मुझे ये पता चल जाए कि आखिरत है, मुझे ये पता चल जाए जन्नत जहन्नम है, ये एक प्राइमरी लेवल है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल। अब ये लेवल अचीव किया जा सकता है कुरान के तर्जमा पढ़ के, यानी जो भी पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा अल्लाह रब्बुल किस तरह बात करते हैं, किस तरह आखिरत की बात करते हैं, किस तरह जन्नत की बात करते हैं, किस तरह जहन्नम की बात करते हैं। तो लेकिन जब ये बात आएगी कि अच्छा जन्नत जहन्नम है तो मैं जन्नत जहन्नम या जन्नत में कैसे जाऊं, जहन्नम से कैसे बचूं, यानी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जब ये वाली स्टेज आएगी तो फिर वो खुद मानेगा कि मुझे नहीं समझ में आ रही कुरान पढ़ के कि मैंने करना क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं नमाज का हुक्म तो अल्लाह ताला देते हैं लेकिन नमाज पढ़नी कैसे है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रही कुरान पढ़ के। ज़कात का अल्लाह ताला बताते हैं लेकिन ज़कात कितनी देनी है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, मैं मुझे कब देनी चाहिए, ये सारी चीजें मुझे कुरान पाक से नहीं मिल रही। तो इसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या अल्लाह ताला मुझसे चाह रहे हैं। तो ये जो सेकंड स्टेज है इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि किसी आलम दीन से पूछो, और ये अल्लाह ताला की रिकमेंडेशन है कुरान पाक के अंदर ही कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो तफक्कुफ दीन हासिल करे और फिर लोगों के आके अल्लाह के सामने आके वो बयान करे और लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करे और अल्लाह ताला से खबरदार करे। तो अल्लाह ताला खुद कहा कि कुछ जमात होनी चाहिए, उनके पास लोगों को जाना चाहिए, कई अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अहले जिक्र से पूछा अगर तुम नहीं जाते, फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, और फिर खुद कहा कि वत्तबे सबील मन अलावा इलाही, कि लोग कहते हैं किस फिर आलिम के पास जाएं, तो अल्लाह ने वो भी बता दिया कि वत्तबे तबा करो जो कि अल्लाह से रजू करने वाला हो। तो जिसने सिर्फ किताबें ना पढ़ी हो बल्कि वो उसके अंदर अल्लाह का खौफ भी हो, अल्लाह की मोहब्बत भी हो, अल्लाह का ताल्लुक भी हो, अल्लाह की तरफ उसके एक एक कनेक्शन भी हो, ये सारी चीजें उसके अंदर हो, तब उस आलम की इत्तबा करो। तो एक चीज तो शायद से पता चलती है, वरना ये आम बंदा कैसे पता कर सकता है कि आयत मनसूख है ये या आयत मनसूख नहीं है। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि हुक्म यानी कि मोमिन या मोमिन होना या मुसलमान होना ये होता है कि सुनना और मानना। जिस तरह नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने किबले को बदलवाया और किसी ने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया तो ये मोमनाना शान था। इसी तरह इंसान बस सुने कि हाँ अल्लाह का हुक्म ये है, अब मैं उस पर अमल करूंगा, सारी दुनिया मेरी मुखालिफ होती है हो जाए, सारे सारे लोग मेरे मुखालिफ होते हैं हो जाए, मैंने हुक्म से नहीं हट, ये होता है मोमनाना शान, ये होता है मुसलमान होना। अगर इंसान सोच में पड़ गया, अगर इंसान ये सोच में पड़ गया कि मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरा शौहर क्या कहेगा, मेरे मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरी जॉब वाले क्या कहेंगे, तो अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ये लेवल देखना चाहते हैं और इसीलिए अल्लाह ताला बदल देते हैं हुक्मों को। उसकी लॉजिक ये बताई अल्लाह ताला ने। और फिर आगे अल्लाह ताला ने खुद कहा कि अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह वो ज़ात है कि आसमान और ज़मीन की सल्तनत तन्हा उसी की है और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा रखवाला है और ना मददगार। तो ये हक मान अंदाज कि मेरी मर्जी हुक्म बदल दो, मेरी जमीन और आसमान की बादशाहत मेरे पास है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ बदलो, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो बस वो मोमिन नहीं है। और अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा कि मेरे अलावा कोई मददगार किसी का नहीं है। अगर मदद है मिलनी है अल्लाह से मिलनी है, और कैसे मिलनी है वो इन्हीं अहकाम के जरिए से मिलनी है। उन अहकाम को सुने और माने और फिर देखे अल्लाह की मदद कैसे आती। ये एक असूल अल्लाह ताला पूरे कुरान पाक में इंसान को बताते जा रहे हैं कि सुनो मानो और फिर मदद हासिल करो, सुनो मानो और मदद हासिल करो। जो इंसान एक परेशानी के एक में फंसा रहता है और मुश्किलात के अंदर फंसा रहता है तो वो लोगों से ओपिनियन लेता है कि मैं कैसे निकलूं इस मुश्किल से। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह खुद ये राय दी है, खुद ये टोटका दिया है, खुद ये मशवरा दिया है कि मैं बताता हूँ कैसे निकलूं। और वो उसका ईजीएस्ट तरीका ये है कि अल्लाह के हो जाओ और अल्लाह ताला खुद तुम्हें निकाले। जो हम आयते शुरू में महफिल जिक्र में पढ़ते हैं अल्लाह वलीउल मोमिनीन, अल्लाह वली है मोमिनीन का, तो वह दोस्त होता है। अब यहां दोस्तों के पास इंसान जाता है मुझे मुश्किल से निकालो, तो अगर अल्लाह जिसका दोस्त हो वो कैसे, मतलब कि अल्लाह ताला जिसका दोस्त हो जाए अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं मेरा दोस्त फंसा हुआ मुश्किल के में। तो वल्लाहु वलीउल मोमिनीन, इसी तरह और कितनी आयतें कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह सालहीन का वली है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उनके 8 बेटे थे और वो अपनी जब खिलाफत का दौर था तो बहुत कम माल अपने पास रखते थे, बहुत कम खर्च रखते थे। हत्ता कि ये किताबों में आता है कि उनकी बीवी के पास एक वक्त ये आया कि उन्हें कि ईद का वक्त आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोई नए कपड़े हों तो इसका कोई इंतज़ाम हो जाए। उन्होंने कहा देखो मेरी तनख्वाह तो इतनी है जो मैंने मुकर्रर की है, उसमें अगर बनते हैं बना लो। उसने कहा उसमें तो नहीं बनेंगे। तो कहा ठीक है फिर नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चों की ख्वाहिश है आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा एक ही ऑप्शन है कि मैं एडवांस ले लेता हूँ अगली पे को और उससे बच्चों के कपड़े बना लेते हैं, फिर अगला महीना हम बचत करेंगे। तो वो जब खजानची के पास गया अपनी तनख्वाह लेने के लिए गए तो उनको बताया कि इसका मुझे एडवांस पे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले लें, लेकिन मुझे पहले लिख के दें कि आप एक महीने तक जिंदा रहेंगे, कि आपको ग्रेंट इतनी श्योरिटी है कि मैं एक महीने तक जिंदा रहूंगा कि आप एडवांस पे ले रहे हैं, तो आप लिख के दे दें मैं आपको दे देता हूँ। उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं लिख सकता। तो कहा ठीक है फिर नहीं, ये भी नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा तुमने मेरी आंखें खोल दी, और अपनी बेगम को यही जवाब आके कह दिया कि ये नहीं हो सकता, वो एडवांस पे भी नहीं मिल सकता। और वही पुराने कपड़े पहन के उनके बच्चों ने ईद गुजारी। तो बच्चों को उन्होंने कहा कि देखो बच्चों मेरे पास यही ऑप्शन थी, या मैं ईमानदारी की जिंदगी गुजारूं और जन्नत में जाऊं, या मैं ख्यानत करूं और जहन्नुम में जाऊं। मैं जहन्नुम बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब इसी तरह की जिंदगी गुजारनी। तो बच्चे भी खुश हो गए, राजी हो गए। तो उनके बारे में ये है कि जब उनके 8 बच्चे थे और उनकी मौत का वक्त करीब आया तो लोगों ने उन्हें कहा, या उनके करीबी रिश्तेदार ने उनको आगे कहना शुरू कर दिया कि आप कैसे आदमी हैं कि इतने बच्चे हैं आपके, 8 बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा आगे जाके, आपने कुछ उनके लिए जमा नहीं किया। तो उन्होंने किताबों में लिखा है कि लेटे हुए थे, उन्होंने कहा मुझे बिठाओ। जब बैठे तो उन्होंने कहा कि देखो दो ही चीजें हैं, एक ये कि ये मेरे 8 बच्चे फासिक बने, गुनहगार बने, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि फासिकों के लिए माल जमा करूं और वो उसमें याशी करें और वो गुनाह करें और वो गुनाह का बवाल मुझ पर आए। दूसरी रास्ता ये है जो मैंने इन्हें सिखाया है, वो ये कि अल्लाह से इनका ताल्लुक जोड़ा है। अगर तो ये सराह पे रहे तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि अल्लाह ताला सालेहीन का वली है, उनका मतवली है, वो उनको पालता है। तो अगर तो ये उस राह के अंदर है तो अल्लाह इन्हें पालेगा, ये जाया नहीं होंगे। तो फासिक को मैं नहीं कि नहीं मैं नहीं कुछ करना चाहता हूँ, नेकों के लिए अल्लाह काफी है बस। और यही हुआ, वो फौत हुए और उनके पास कुछ नहीं थी विरासत, और वक्त ने देखा कि वो 8 बच्चे 8 सूबों के गवर्नर बने और वो कितना माल अल्लाह के राह में सदका करते थे। यानी अल्लाह ताला ने उनको फकीर नहीं रखा, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत दिया क्योंकि वो नेक थे। तो अल्लाह ताला नेकों का वली है, ये पक्की बात है। अब ये रास्ता ऐसा है कि इंसान सुनता है लेकिन यकीन नहीं आता कि अच्छा वाकई अल्लाह ताला पालेगा। बहुत ज्यादा यकीन आ जाए तो एक दिन इंसान उठ के तहज्जुद पढ़ लेता है, 2 दिन पढ़ लेता है, हफ्ता पढ़ लेता है, महीना पढ़ लेता है, कहा नेकी के रास्ते पर मैं चल पड़ा हूँ। तो ऐसे नहीं है, पूरी तरह जब तक इंसान डिवोट नहीं करता अल्लाह ताला को तब तक अल्लाह ताला उसके वली नहीं बनते। और जब अल्लाह ताला जब तक नहीं बनते, इंसान इसी तरह हालात के भंवर में फंसा रहता है। तो इन हालात के भंवर से निकलने का तरीका ये है कि इंसान अल्लाह का वली बने, और उसका तरीका ये है कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। मतलब क्या कि कुरान और हदीस को इस नियत से पढ़े कि अल्लाह क्या चाहते हैं, और जो जो हुक्म आए 100% उस पर अमल करना शुरू करे, और फिर देखे कि उसे कैसे अल्लाह ताला की वलायत तो और अल्लाह ताला का कुर्ब और अल्लाह की मदद मिलती है। तो अल्लाह ताला वो बातें हमें समझा दें जल्दी जो कि अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनती हैं, और उस पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। मुराकबा कल्बी जिक्र को कहते हैं कि इंसान ये सब सोचना होता है कि मेरा कल्ब जो सीने के अंदर है वो अल्लाह को याद कर रहा है और कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ना जुबान से कुछ करना है, ना सांस से कुछ करना है, ये सिर्फ एक सोच का अमल है, ये सिर्फ सोचना है। سيدنا محمد وبارك وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين। يا الله پاک عابدوں نے جہانوں کے مالک ہیں خالق ہیں, تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ نے اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں مسلمان بنایا, یا اللہ پاک ایمان کی دولت نصیب فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا, یا اللہ پاک قرآن جیسی کتاب دی, یا اللہ پاک آپ نے تمام حجتیں تمام کر دیں, ہمیں شعور دے دیا, ہمیں نعمتیں دے دی, ہمیں علم دے دیا, یا اللہ پاک یہ توفیق دے دی کہ ہم نے اکٹھے ہو کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دیں, یا اللہ پاک زندگی کا حصہ گزر چکا, ایک بڑا حصہ گزر چکا یا اللہ پاک غفلت کے اندر، قرآن کو ناس یا اللہ پاک قرآن سے غافل رہتے ہوئے، یا اللہ پاک نا عمل کرتے ہوئے اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس ضائع کی ہوئی زندگی کو یا اللہ پاک معاف فرما دے، یا اللہ پاک اس کو یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس غفلت والی زندگی کو یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اچھائی میں بدل دے، یا اللہ پاک اس خسارے کو یا اللہ پاک فائدے میں بدل دے، یا اللہ پاک اس نقصان کو یا اللہ پاک نفع میں بدل دے، یا اللہ پاک تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا اللہ پاک تو جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو جب چاہے یا اللہ پاک برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے، جو جب چاہے یا اللہ پاک کسی برے کو نیکی کی توفیق دے دے، یا اللہ پاک قلوب تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے قلوب کو اپنی طرف بدل دے، یا اللہ پاک ہمارے اندر شوق پیدا کر دے دین کا، شوق پیدا کر دے اپنی محبت کا، شوق پیدا کر دے یا اللہ آخرت کی تیاری کا، شوق پیدا کر دے موت کی تیاری کا، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے غفلت سے ہمیں محفوظ فرما، غفلت سے یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پاک دنیا کی محبت میں دنیا کی اٹریکشن میں گم ہونے سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ پاک گناہوں کی نحوست ہمارے سامنے واضح فرما، یا اللہ گناہوں کی یا اللہ ظلمت ہمارے سامنے واضح فرما، گناہوں سے کیا نقصان ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے کھول دے، یا اللہ پاک نیکی اور طاعت کی عزت نصیب فرما، نیکی اور طاعت کا نور نصیب فرما، اس کی نیکی اور طاعت کی رغبت نصیب فرما، اس سے محبت نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اور اللہ پاک جو بھی رکاوٹیں ہیں دین پہ نہ چلنے کی جو بھی وجہ ہے اپنی رحمت سے سب کو دور فرما، یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں غموں میں مبتلا ہیں اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، جو مال کی وجہ سے پریشان یا اللہ پاک ان کو یا اللہ پاک حلال طیب رزق نصیب فرما، جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ پاک جن کے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ پاک جو جوان بچے بچیاں ہیں یا اللہ پاک ان کو یا اللہ پاک قدردان جوڑے نصیب فرما، یا اللہ پاک جو لوگ جسمانی صحت کی وجہ سے پریشان یا اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ پاک جو روحانی پریشانی کی وجہ سے پریشان یا اللہ پاک غصے کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے اپنی رحمت سے ان کی روحانی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک جو جس جس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے سب کے لیے نکلنے کی سبیل پیدا فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت اور ایمان کی موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا حساب بلا استحقاق جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں مسلمان، یا اللہ پاک ظالموں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے ان کے نکلنے کی سبیل پیدا فرما، یا اللہ پاک ظالموں کو یا اللہ پاک ظالموں کی ظلم سے یا اللہ پاک ان کی حفاظت فرما، ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے اوپر ظلم ہونے سے بھی محفوظ فرما اور ہمیں دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے اپنی رحمت سے سب کی بخشش فرما، سب کے یا اللہ درجات کو بلند فرما، یا اللہ پاک جو آج ہم نے یہ محفل یا اللہ پاک اس میں جو کلمات پڑھے جو بات کی یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا اللہ پاک محدثین فقہ کرام، یا اللہ پاک اس امت کے اولیاء، یا اللہ پاک جو نیک صالحین اور مومنین گزرے ہیں اپنی رحمت سے سب کو یا اللہ پاک اس کا اجر نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کی وجہ سے یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما، اور ہمیں یا اللہ پاک اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔